प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 609। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सुवसाहूनं। सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट गाति कर्मने प्रणमन करु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वळीशेष तीर्थंकर अने सौसिद्ध शुद्धास्ते त्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्याचरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदो वळे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने
य नमस्करण करिये रीते
गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो साम्यने ये नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम सातवीं पुस्तक तक आ गए हैं और सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या अभी हम जयसेनाचार्य की टीका देख रहे हैं, तीन नंबर के पुष्प पर, पेज नंबर 3। कल हमने थोड़ी सी पढ़ी थी टीका, देखो यहाँ क्या कहा। यहाँ जीव का शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न और अन्य द्रव्यों से असाधारण ऐसा स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर में यह गाथा आ गई है, गाथा नंबर 172। अब यहाँ कहते हैं रूप रस रूप गंध रहित होने से और वो स्पर्श के यानी स्पर्श का व्यक्तत्व नहीं होने के कारण अव्यक्त होने से अशब्द होने से अलिंग ग्रहण होने से और अनिर्दिष्ट संस्थान होने से नहीं ऐसा जीव को जाना, उसका अर्थ तथा ही जाए ना वहां से हम इन्हें रूप गंध रहितत्वात ऐसे ऐसे स्वरूपत्वात अशब्द स्वरूपात पहले रहित कहा फिर अ लगाया उन्होंने, यानी जीव को ऐसा जानो उसी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये बताया है। लिंगम इंद्रियम मिथा मिला आपको तथा ही जहाँ लिखा है ना वो कल हमने पढ़ा था, दोबारा ले रहे मिला चार लाइन आगे तथा ही लिंगम इंद्रियम लिंग कहने से यहाँ लिंग का अर्थ किया इंद्रिय तेन अर्थानाम ग्रहणम परिच्छेदनम न करोति, यानी इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को नहीं जानता है, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहा। और कहे क्यों, तो कहते स्वयं एव अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान सहितत्वात्, आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान सहित होने से उसको अलिंग। एक मिनट, मैंने हिंदी में से पढ़ा। एक सेकंड, हाँ, तथा ही लिंगम इंद्रियम तेन अर्थानाम ग्रहण परिच्छेदम न करोति तेन अलिंग ग्रहण भवति, तदपि कस्मात् स्वयमेव अतीन्द्रिय अखंड, हाँ न डाला एक्स्ट्रा।
कितने टाइम पे,
देखो देखो स्वयमेव स्वयमेवातीन्द्रिया, वो बराबर है स्वयमेवातीन्द्रिया खंड ज्ञान सहित, यानी अखंड ज्ञान, न एक्स्ट्रा पढ़ा है बीच में, खंड न दिख रहा है ना वहाँ पर, मिला क्या
लाइन बताना उसमें से। हाँ,
इसमें तीन नंबर के पेज पर सेंटर में एकदम, तथा ही के नीचे, नीचे की लाइन में, तथा ही के नीचे की लाइन में, तदपि कस्मात के बाद, स्वयमेवातीन्द्रिय अखंड न हुआ है, वो न निकालना, नहीं मिला, जरा ऊपर थोड़ा, तदपि कस्मात किधर लिखा है, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। तेने एव लिंग शब्द वाच्यन, उसी लिंग शब्द से दूसरा अर्थ कर रहे हैं, चक्षुरादि इंद्रियेण अन्य जीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कर्तुं नायाति तेन अलिंग ग्रहणं अलिंग ग्रहण उच्यते। देख, तेन एव लिंग शब्द वाच्यन, चक्षुरादि इंद्रियेण अन्य जीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं चाहिए, न के ऊपर बिंदी चाहिए, तेन अलिंग ग्रहण उच्चते, हो गया। म्हणजे चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अन्य जीवों का जिसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहा। तदपि कस्मात, और भी कैसे, क्यों, निर्विकार अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात्, ये बरोबर है, निर्विकार अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात् लिंगम। अभी यहाँ से अपना पढ़ना आज का शुरू होता है, लिंगम धूमादि, इन्हें धूमादि को लिंग कहा, चिन्ह कहा कुछ, तेन धूमलिंग उद्भव अनुमानेन अग्निवत अनुमेयभूत परपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेन अलिंग ग्रहण इति, यहाँ बराबर है, लिंगम धूमादि तेन धूम लिंग लिंगोद्भव अनुमानेन, यानी लिंग क्या है तो धूमादि उसको लिंग कहा, उस धूम जो लिंग है उससे उद्भव उससे उत्पन्न ऐसा अनुमान, अनुमानेन अग्निवत, यानी लिंग जो धूम है वो लिंग बताया, यानी चिन्ह बताए, तो उससे उत्पन्न अनुमान किया, किसका? अग्नि का। तो लिंगोद्भव अनुमान है ना अग्निवत, यानी लिंग के द्वारा या लिंग से उत्पन्न अनुमान से अग्नि को जाना, वैसे यहाँ लिखा ना लिंगोद्भव अनुमान है ना अग्निवत, अनुमेय भूत पर पदार्थानाम ग्रहणम न करोति, यानी पर पदार्थों का ग्रहण वो जो उसको अनुमेय भूत कहा, जो ज्ञेय पदार्थ है जो अनुमान से जाने जाते हैं उसको अनुमेय कहा। जरा आपका माइक जरा दूर रखना। हाँ इसीलिए लिंग ग्रहण कहा। तदपि कस्मात्, और क्यों? निर्विकार अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात्। नहीं, ये हो गया था अभी, अनुमेय भूत पर पदार्थानाम ग्रहण न करोति तेन अलिंग ग्रहण इति, ग्रहण इति। तदपि कस्मात्, फिर और पूछ रहे। तो कहते स्वयमेव अलिंगोद्भव कुछ यहाँ फिर गड़बड़ी लगती है। देखो अलिंगोद्भव, अलिंगोद्भव द्भाव हुआ है, पर यहाँ स्वयं में वो लिखा है ना, वो इसमें है ही नहीं हमारे उसमें। तदपि कस्मात् अलिंगोद्भव अतीन्द्रिय ज्ञान गम्यत्वात्। आपके उसमें क्या है, स्वयं में लिखा है? इसमें नहीं है, इसमें होना चाहिए फिर। आपकी हिंदी में है? अच्छा, इन्हें स्वयमेव लिखा ना, स्वयमेव अलिंगोद्भव चाहिए, भवा चाहिए, वद्भाव लिखा ना, वद्भवा चाहिए, यानी वो उल्टा पुल्टा हुआ उसका काना, ये मात्रा जो है वो। समझ में आई बात? फिर से अभी नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं लाइन, आठवीं लाइन कस्मात के बाद स्वयमेवा लिंग, लिंगो बराबर है वो ध्व, ध्व चाहिए, ध्वा है ना। उद्भव अतीन्द्रिय वचा वा चाहिए, उद्भाचा ध्व चाहिए। समझ में आया क्या करना?
द्वा की जगह ध्व,
ध्व चाहिए, ध्व और वा। स्वयमेवा लिंगो भवा, यानी भव अतीन्द्रिय ज्ञान सहितत्वात्। समझ में आई बात? ये क्या करेक्शन क्या करना? एक एक मिनट। हाँ, अच्छा ये बराबर था मेरे में भी, दो बार वो स्वयमेव अतीन्द्रिय वो आया है, पहली बार किया हमने स्वयमेव लिंगोद्भव अतीन्द्रिय ज्ञान सहितत्वात्, उसके बाद तेनेव लिंगोद्भव अनुमानेन, ये बराबर है लिंगोद्भव अनुमानेन अग्निग्रहणवत् परपुरुषाणां यस्य आत्मनो ग्रहणम्, ग्रहणमेने परिज्ञानम् कर्तुं न आयाति तेन अलिंग ग्रहण इति। पहले में पहले उन्होंने स्वयं वो अलिंग अलिंगोद्भव अलिंग से उत्पन्न अतीन्द्रिय ज्ञान सहित होता है यानी उसी लिंगोद्भव अनुमान से अग्नि का ग्रहण होता है। वैसे अन्य पुरुषों को जिस आत्मा का ग्रहण यानी परिज्ञान नहीं करने में आता इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहे। यानी जैसे अनुमान से पर पदार्थ को नहीं जान रहा वैसे परज भी इसको अनुमान से ही जानते ऐसा नहीं है ये कहे। हाँ पर भी उसको नहीं जान रहे ये भी दूसरे को नहीं जान रहा बस इतना ही लेना। तदपि कस्मात् अलिंगोद्भवातीन्द्रिय ज्ञान गम्यत्वात्। अथवा लिंगम चिन्हम लांछनम यानी लिंग कहो चिन्ह कहो लांछन कहो शिखा जटाधारी चाहिए डटाधारी हो गया जटा ज ड के बदले ज शिखा जटाधारणादि तेन अर्थानाम ग्रहणम ग्रहण हो गया ग्रहणम चाहिए परिच्छेदनम चाहिए। हाँ न करोती यानी ये कौन सा लिंग या चिन्ह या लांछन बताया कोई शिखा धारण करता है जटा धारण करता है अन्य अन्य मतियों में पाखंडियों में ऐसा होता है कहते उससे बाह्य लक्षण से। हाँ इसलिए उसके द्वारा अर्थों के पदार्थों का ग्रहण यानी परिच्छेदन नहीं करता इसलिए अलिग्रह ग्रहण है। तदपि कस्मात् और भी क्यों स्वाभाविक अचिन्होद्भव भाव यहाँ पर भी हो गया फिर स्वाभाविक अचिन्होद्भव अतीन्द्रिय वह ध्व करना और व का वा करना ये स्वाभाविक जो अचिन्ह उससे उत्पन्न अतीन्द्रिय ज्ञान सहित होने के कारण तेन एव चिन्होद्भव ज्ञानेन उसी चिन्होद्भव जो ज्ञान है उससे परपुरुष पुरुषाणाम हाँ नाम पुरुष को ने पुरुषों को ये पुरुषों के द्वारा ऐसा पर पुरुषों पुरुषाणाम यस्य आत्मनो ग्रहणम परिज्ञानम कृत्रम नहीं है कर्तृम चाहिए बहुत कर्तृम चाहिए वो जो नीचे क के नीचे है ना वो त के त्रु के नीचे कर्तुम पूरे शब्द ही फिर दोबारा लिखना पड़ेगा ये त के ऊपर जो रफा रहे और बिंदी वो रखना और नीचे वो एक उसको क्या कहते हैं वाटी कृष्ण जैसा हाँ कर्तुम नायति कर्तुम हाँ कर्तुम नायति एक मिनट कर्तुम पहले एक और भी कर्तृ शब्द आया था तथा ही के बद कर्तुम नायति कर्तुम तू रस्व आया है दो बार वैसे ही करना पड़ेगा कर्तुम नाम रफर नहीं आया है नहीं पर यहाँ पर ऐसा है कर्तुम नहीं, उन्होंने तू ह्रस्व दिया है दो जगह, कर्तुम नायाति, कर्तुम दोनी, दोनों लिखा है उन्होंने, दोनों ही आ गए। तेनालिंग ग्रहण इति, अभी थोड़ा ही रह गया। तदपि कस्मात् स्वाभाविक चिन्मोद्भव अतीन्द्रिय ज्ञान सहितत्वात्, ये बारंबार वही उनको रीजनिंग वही बता रहे हैं। तदपि कस्मात् निरुपराग स्वसंवेदन ज्ञान गम्यत्वात् इति, निरुपराग ने यानी वो भी दूसरों को नहीं जाता और पर पुरुष भी उसको नहीं जानते, इस तरह से निरुपराग यानी राग रहित स्वसंवेदन ज्ञान गम्यत्व होने के कारण, एवं अभी यहाँ न कहाँ आया, एवं अलिंग ग्रहण शब्दस्य, एवं न, न नहीं चाहिए, निकाल ही दो न को, एवं अलिंग ग्रहण शब्दस्य व्याख्यान क्रमेण, एवं अलिंग ग्रहण शब्द से व्याख्यान क्रमेण शुद्ध जीव स्वरूपम ज्ञातव्यम इति अभिप्रायः, अभ्रियायः हुआ समझ में आए, अभिप्राय करना है इत्य के बाद भी प्रायः, भ्री के बदले भी, ऑर्डिनरी भी, या के बदले प्रा, यानी इस तरह से अलिंग ग्रहण शब्द के व्याख्यान क्रम से शुद्ध जीव का स्वरूप ज्ञातव्य में जानना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। अभी हम गुरुदेव के प्रवचन पढ़ेंगे इसके ऊपर। कहाँ है, ऊपर है कि इसके ऊपर? हाँ देखो, चार नंबर का पेज, ने वो लाइट लाके दिया था, कहाँ रखा है पता नहीं, उधर है क्या, उधर है सामने आईने के सामने, हाँ हाँ वही देना उनको जरा। संस्कृत तो बिल्कुल नहीं दिखता, अभी दिखेगा शायद, अभी वो।
थैंक यू सर।
चार्ज है क्या? हाँ चलो चलो, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हेडिंग के साथ फिर पढ़ते हैं गाथा का हेडिंग। हवे तारे जीवनु शरीरादि सर्व परद्रव्यों की विभागना साधनभूत, विभाग का साधन है भेद के लिए जो साधन रूप से है, तो कह कहते असाधारण स्वलक्षण शू छे ते कहे छे, यानी जीव का असाधारण स्वलक्षण क्या है कि जिसके द्वारा शरीरादि परद्रव्यों से उसका हम भेद जान सकते हैं। अभी अन्वय अर्थ पढ़ते, जीव ने अरस अरूप अगंध अव्यक्त चेतना गुण वालों अशब्द अलिंग ग्रहण अने जेने कोई संस्थान कहूं नथी एवो जाण। अब टीका, टीका जो अमृतचंद्राचार्य की, उसको पढ़कर फिर स्वामी जी उसको एक एक बोल को समझाएंगे। आत्मा रसगुण ना अभाव रूप स्वभाव वालो होवाती, रूप गुण ना अभाव रूप स्वभाव वालो होवाती, गंध गुण ना अभाव रूप स्वभाव वालो होवाती, स्पर्श गुण रूप व्यक्तताना अभाव रूप स्वभाव वालो होवाती, शब्द पर्याय ना अभाव रूप स्वभाव वालो होते, यहाँ पर्याय को लिया क्योंकि शब्द ये पर्याय है, द्रव्य पर्याय, तथा ते बधाने कारणे अर्थात रस रूप गंध वगैरह ना अभाव रूप स्वभाव ने कारणे लिंग वड़े अग्राह्य होवाती, यानी उसमें रस रूप वगैरह नहीं है, तो ये जो इंद्रियों के विषय है, तो बधाना कारणे यानी अभाव रूप स्वभाव ना कारणे लिंग वड़े अग्राह्य हुआ थी अने सर्व संस्थानों ना अभाव रूप स्वभाव वाला हुआ थी आत्मा ने पुद्गल द्रव्यति विभागना साधनभूत। मैंने ये पहले क्या क्या है उसको बताया, 7 पॉइंट्स बताए। ये होने के कारण आत्मा को पुद्गल द्रव्य से हम उसका भिन्नता बताने के लिए जो साधन रूप से क्या है उसका अरसपणु अरूपपणु अगंधपणु अव्यक्तपणु अशब्दपणु अलिंग ग्राह्यपणु अलिंग ग्राह्य लिया यहाँ पर, जो ग्रहण नहीं होता उसका, अने असंस्थानपणु छे पुद्गल तेमज अपुद्गल, क्योंकि केवल पुद्गल से भिन्न करने के लिए अरस नहीं, अरस अरूप कहने से अन्य भी अरूपी द्रव्य सब आ जाएंगे उसमें, इसलिए अपुद्गल को भी लेना है। पुद्गल तेमज अपुद्गल एवं समस्त अजीव द्रव्यों थी विभागनु साधन, यानी सभी अजीव द्रव्यों से भेद हम कह सकते हैं, उसका जान सकते हैं, उसका साधन क्या है, तो चेतना गुणमय पणु छे अने तेज मात्र स्वजीव द्रव्य आश्रित होवाती। चेतना गुणमय पणा कहाँ पाया जाता है, तो स्वजीव द्रव्य के आश्रय से हुआ थी। स्वलक्षण पणु धरतु थकूं, यानी जो चेतना गुणमय पना है वो उसका स्वलक्षण है आत्मा का, आत्मानो शेष अन्य द्रव्यों थी विभाग साधे छे, यानी चेतना गुणमय पना उसका स्वलक्षण होने से आत्मा का अन्य द्रव्यों से भेद वो सिद्ध कर सकता है। अलिंग ग्राह्य एम कहेवानू छे, त्या जे अलिंग ग्रहण एम कहूं छे ते घना अर्थों ने प्रतिपत्ति करवा माटे छे। क्या कहते हैं, पहले अलिंग ग्राह्य कहा था है ना, ऊपर छठे नंबर के पॉइंट में अग्राह्य बताया था, लिंग बड़े अग्राह्य, परंतु वहाँ अलिंग ग्रहण जो शब्द उन्होंने वापरा है उसके द्वारा घना अर्थों की प्रतिपत्ति करवा माटे, जने उसमें से अनेक अर्थ उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रहण शब्द के उन्होंने अलग 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 अर्थ करके उसमें से अलग 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 बोल बनाए हैं। ते आ प्रमाणे छे, अब यहाँ जो 20 बोल उन्होंने निकाले हैं अमृतचंद्राचार्य ने, उसको अभी हम फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राहक यानी ज्ञायक एवा जेने लिंगो वड़े एटले के इंद्रियो वड़े ग्रहण ने जाणवू थतू नथी ते अलिंग ग्रहण छे, यानी आत्मा ज्ञायक है और वो इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है, पर पदार्थों का जानना इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। आ रीते आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय छे एवं अर्थनी प्राप्ति थाई छे। बीजो ग्राह्य ने जनावा योग्य एवं जेनू, अभी आत्मा को ज्ञेय बनाया, पहले आत्मा परपदार्थों को जानता था परंतु इंद्रियों के द्वारा उनका जानना नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान में ऐसा उसके अपने से ही वो पदार्थों के जानने का कार्य हो सकता है। अब कहते आत्मा को ग्राह्य लिया, तो ग्राह्य एवं जेनू, जेनू ने आत्मानु लिंगो वड़े एटले कि इंद्रियो वड़े ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे, यानी आत्मा को भी इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं सकते। आ रीते आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्षनो विषय नथी एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। पहले पॉइंट में पर पदार्थों को जानते समय वो इंद्रियों से नहीं जान रहा है, अब यहाँ आत्मा को जानते समय वो इंद्रिय का विषय नहीं है। फिर से दो पॉइंट है, पहले पॉइंट में आत्मा पदार्थों को जानता है वो इंद्रियों से नहीं जानता है, क्योंकि आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, तो वो वहाँ भले निमित्त हो पर इंद्रियाँ कुछ नहीं जानती है, इंद्रियों से वो नहीं जानता है क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। अब आत्मा को ग्राह्य कहा, आत्मा को जानना है तो जनावा योग्य है, तो कहते उसका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, यानी इंद्रियों के द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता, पहले पॉइंट में इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जानता, और यहाँ इंद्रियों के द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पेज नंबर 5, जेम धुमाड़ा द्वारा यानी धूम के द्वारा अग्निनु ग्रहण थाय छे, ग्रहण होता है ने जानना होता है, यानी जहाँ अग्नि है वहाँ धूम है ऐसा हम जानते हैं, तेम लिंग द्वारा इतले के इंद्रिय गम्य द्वारा यानी इंद्रियों थी जनावा योग्य चिन्ह द्वारा जेनु ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। यानी यहाँ क्या कहते हम, जहाँ अग्नि दिखती है वहाँ, सॉरी जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है ऐसा हम जानते हैं, वो चिन्ह के द्वारा हम जानते हैं। ऐसे आत्मा का जो जानना होता है वो इंद्रिय गम्य के द्वारा नहीं होता, यानी पदार्थों के इंद्रिय द्वारा जो चिन्ह है स्पर्श रस गंध वर्ण है तो उसके द्वारा आत्मा उसको नहीं जान रहा है ये कह रहे हैं। जेनु जेनु ने आत्मानु सॉरी तीसरे ने इंद्रिय गम्य एवं चिन्ह द्वारा जेनु ग्रहण यानी जानवू थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। यानी इसमें क्या बताया, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान नो विषय नथी, अनुमान का विषय नथी, कि जैसे कोई इंद्रिय गम्य कोई चिन्ह है और उसके द्वारा हम अनुमान कर आत्मा को जान सकते हैं ऐसी बात नहीं। अब चौथा पॉइंट, बीजा वड़े मात्र लिंग द्वारा जेनु ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा अनुमेय मात्र ने केवल अनुमान थी जनावा योग्य नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे। मात्र मात्र शब्द डाला उन्होंने, ये केवल अनुमान थी जानने में आता है ऐसी बात नहीं है, यानी दूसरों के द्वारा ये बात है। जेने पांचवा, जेने लिंग थी परनु ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा अनुमाता मात्र ने केवल अनुमान करना रोज नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाई छे। पहले अनुमेय मात्र ऐसा लिया, अब यहाँ अनुमाता मात्र नहीं है, यानी अनुमान करता नहीं ऐसा नहीं, मात्र शब्द डाला, केवल अनुमान अनुमाता है ऐसा नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानने वाला है। छठा पॉइंट, लिंग द्वारा नहीं पण स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाय छे ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। पहले तो बताए अनुमान अनुमाता मात्र नहीं है, उसी को समझाने के लिए क्या कहा कि स्वभाव के द्वारा उसका ग्रहण होता है। पहले केवल अनुमान से ही जानता है आत्मा तो नहीं, स्वभाव से ही उसका जानना होता है, इसलिए वो सातवां पॉइंट अलग बताए। छठा हो गया, पांचवा और छठा हो गया। अब सातवा, जेने लिंग वड़े इतले के उपयोग नामक नामना लक्षण वड़े। अब यहाँ लिंग के अर्थ में यानी उपयोग को यहाँ लिंग कहा। पहले लिंग के लिए इंद्रिय गम्य चिन्ह की बात बताई थी, कहते जेने लिंग वड़े इतले के उपयोग नामना लक्षण वड़े, ग्रहण इतले के गे पदार्थनु आलंबन नथी ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्माने बाह्य पदार्थोना आलंबन वालो ज्ञान नथी एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। यानी ग्रहण का अर्थ क्या किया, आलंबन, ये बाह्य नहीं, अनुमान यानी जैसे चिन्ह के द्वारा अनुमान, जैसे धुएं से हमने अग्नि का अनुमान लगाया वो अनुमान है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि बाह्य पदार्थों का वो आलंबन नहीं कर रहा है, यानी पदार्थों का आलंबन करके ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी वो निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको अपने से हो रहा है। आठवा, जे लिंग ने एटले के उपयोग नामना लक्षण ने ग्रहण करतो नथी, एटले के पोते क्या बाहर थी लावतो नथी, ग्रहण करना यानी यहाँ लेना, जैसे हम कोई चीज़ मंगवाते हैं बाहर से लाते हैं, ऐसा ये उपयोग लक्षण के द्वारा उपयोग लक्षण को बाहर से नहीं लाता है, यानी उसका अपना लक्षण है। जैसे अन्य मति की मान्यता है ना, वो ज्ञान और वो आत्मा उसका समवाय होता है और फिर जानता है, ऐसा कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता उसको। फिर से देखो आठवां पॉइंट, लिंग ने एटले के उपयोग नामना लक्षण ने ग्रहण करतो नथी, एटले के पोते क्यांक बहारथी लावतो नथी, ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा जे क्यांयथी लवातुं नथी एवा ज्ञानवाळो छे, यानी ज्ञान कैसा है कहीं बाहर से नहीं वो लाता, बाहर से प्राप्त नहीं होता है, वो स्वयं ज्ञानमय है, एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। नौ नंबर, जेने लिंगनु एटले के उपयोग नामना लक्षणनु ग्रहण एटले के परतिहरण थई शकतुं नथी, यानी दूसरे उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आत्मा से छीन नहीं सकते, आत्मा का ज्ञान कोई पर पदार्थ बाहर से उसके वहाँ से ग्रहण ले जाए ऐसा नहीं है, ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मानु ज्ञान हरी जई शकातु नथी एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे, उसका ज्ञान कोई छीन नहीं ले सकता, हाँ चुरा नहीं सकता। दसवा पॉइंट, जेने लिंग में एटले के उपयोग नामना लक्षण में ग्रहण एटले के सूर्य नी माफक उपराग एटले मलिनता विकार नथी, ते अलिंग ग्रहण छे। जैसे सूरज को जो ग्रहण लगता है उसको वो मलिनता है, उसका विकार है, वैसे उपयोग नाम का जो लक्षण है उसको कोई ग्रहण यानी उसमें कोई विकार नहीं है, उसको अलिंग ग्रहण कहा। आ रीते आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी छे एवं अर्थनी प्राप्ति थे, यह स्वभाव की बात है, स्वभाव में कोई वहाँ विकार है ही नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। ग्यारहवा पॉइंट, लिंग द्वारा एटले के उपयोग नामना लक्षण द्वारा ग्रहण एटले के पौद्गलिक कर्मणु ग्रहण ग्रहूँ जेने नथी ते अलिंग ग्रहण छे। देखो उपयोग तो स्वभाव है और स्वभाव के कारण कर्मों का यानी जैसे कर्मान वर्गणा कर्मरूप नहीं होती, उसको कहें द्रव्य कर्म का ग्रहण करना होता है, वो उपयोग नाम के लक्षण के द्वारा नहीं होता। हमने पहले बताया जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आती है ना, तीन गाथा आती है। आ रीते आत्मा द्रव्य कर्म थी असंयुक्त छे असंबद्ध छे, यानी जो उसके जो उससे जो द्रव्य कर्म का संबंध हुआ है वो उसके स्वभाव में कुछ नहीं है, एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे। बारह, जेने लिंगों द्वारा एटले कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण एटले कि विषयोनो उपभोग नथी ते अलिंग ग्रहण छे। अभी यहाँ ग्रहण का अर्थ क्या किया, इंद्रियों के द्वारा उपभोग करना, वो आत्मा को नहीं है। आ रीते आत्मा विषयों उपभोगता नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे। आत्मा को जो भोगता का वो अपने सुख का भोगता होगा, ये विषयों का पर पदार्थों का नहीं। तेरा, लिंग द्वारा एटले के मन अथवा इंद्रिय वगैरह लक्षण द्वारा ग्रहण एटले के जीवत्व ने धारण करी राखू जेने नथी ते अलिंग ग्रहण छे, इन्हें मन इंद्रिय वगैरह इत्यादि लक्षणों के द्वारा उसका जीवत्व टिका नहीं है। हाँ, मन और इंद्रिय लिया वगैरह लक्षण में अभी समझ लेना, यानी कोई भी ऐसा चिन्ह लक्षण ले लेना उसके कारण जीव का जीवत्व नहीं है। आ रीते आत्मा शुक्र ने आर्तव ने अनुविधाई एटले अनुसरीने थनारो नथी एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे। हम कहते हैं ना कि ये मनुष्य जन्म तो वैसे आत्मा कहीं उत्पन्न नहीं होता है, यानी उसके कारण उसने जीवत्व धारण किया ऐसा नहीं है। चौदवा पॉइंट, लिंगनु एटले के मेहना कारणों पुरुषादिनी इंद्रियना आकारनु ग्रहण जेने नथी ते अलिंग ग्रहण छे। आ रीते आत्मा लौकिक साधन मात्र नथी एवा अर्थनी प्राप्ति थाय छे, क्योंकि वो इंद्रियों के जो आकार वगैरह वो तो शरीर का चिन्ह है, वो आत्मा का नहीं है। 15 લિંગ વડે એટલે કે અમહેનાકાર વડે જેનું ગ્રહણ એટલે કે લોકમાં વ્યાપવાપણું નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. જૈસે આત્મા લોક વ્યાપી હૈ એસા સમજને વાલે હૈ ને અન્યમતિ હૈ તો કહેતા એસા નહીં હૈ. 15 અમે પહેલે કૌન સા લિયા પુરુષાદિ ઇન્દ્રિયો કા વો લિયા ઉસકો મહેનાકાર કહા. અભી અમહેનાકાર કહેને સે એસા કોઈ ઇન્દ્રિય કા આકાર નહીં પરંતુ આત્મા પૂરે લોક મેં વ્યાપને વાલા હૈ એસા કોઈ માનતે હૈ પાખંડી. આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ સાધનરૂપ આકારવાળો લોક વ્યાપ્તિવાળો નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. અબ 16 નંબર. જેને લિંગોનું એટલે કે સ્ત્રી પુરુષ અને નપુસક વેદોનું ગ્રહણ નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. એને આત્મા કોઈ સ્ત્રી પુરુષ ઓર નપુસકપના નહીં હે ના દ્રવ્ય સે ના ભાવ સે. યહાં લિખા ના આ રીતે આત્મા દ્રવ્ય તેમજ ભાવે સ્ત્રી પુરુષ અને નપુસક નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આત્મા કોઈ પુરુષ આત્મા સ્ત્રી આત્મા નપુસક નહીં હોતા હૈ. 17 લિંગોનું એટલે કે ધર્મચિહ્નોનું ગ્રહણ જેને નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. અને ઉસકે કોઈ શરીર કા બાહ્ય વેશ ઉસકો નહીં હૈ. આ રીતે આત્માને બહિરંગ એટલે બાહ્ય યતિલિંગોનો અભાવ છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. 18 લિંગ એટલે કે ગુણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ અર્થ અને પદાર્થ અવબોધ અને જ્ઞાન અર્થાવબોધ અને પદાર્થો કા જ્ઞાન. યહાં ક્યાં કહા લિંગ એટલે કે ગુણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ પદાર્થ જ્ઞાન જેને નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા ગુણ વિશેષથી નહીં આલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. અકેલે ગુણ ભેદ નહીં લ્યા કોઈ એક ગુણ લઈ લેના ગુણ વિશેષ લ્યા ને. હા અબ પર્યાય કી બાંધે લિંગ એટલે કે પર્યાય એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ વિશેષ. પહેલે તો કેવળ અર્થાવબોધ એટલે પદાર્થો કા જ્ઞાન લ્યા અભી ઉસકે પર્યાય સંબંધી જ્ઞાન જેને નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા પર્યાય વિશેષથી પર્યાયને પર્ટિક્યુલર પર્યાય વિશેષ શબ્દ આવે ને ઉસમે પર્યાય વિશેષથી નહીં આલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. 20 લિંગ એટલે કે પ્રત્યભી જ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ સામાન્ય. યહાં સામાન્ય કો લ્યા વહાં વિશેષ કી વાત ઉપર અર્થાવબોધ વિશેષ લ્યા થા યહાં અર્થાવબોધ સામાન્ય જેને નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા દ્રવ્યથી નહીં આલિંગિત એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. અબ ગુરુદેવ ઇસકો સમજાયંગે. હવે પ્રવચન નંબર 172 આયા ગાથા ભી 172 આ ગઈ 7 નંબર કે પેજ પર 18/7/1975 જુલાઈ મેં હે ને. હા હમ વહાં થે વહી તો મેં સોચ રહી થી. હવે જ્યારે જીવનું શરીરાદી સર્વ પરદ્રવ્યોથી વિભાગના સાધનભૂત એ હેડિંગ કી બાત હૈ અભી એ બોલ્ડ મેં જો લિખા હૈ ઓરિજિનલ પુસ્તક કા મેટર હૈ ઓર જો બીચ મેં હા આપકે પાસ નહીં વો હા હા વો PDF ભેજે કે ઉસને સબકો મિલે કે આપકો હા હા મોબાઈલ મેં આયા હોગા નહીં ઇનકે પાસ નહીં હોગા હા કોઈ બાત નહીં. હવે જ્યારે જીવનું હવે ત્યારે જીવનું જ્યારે કે ત્યારે इस ओरिजिनल अतः किम तरही
जग की जगत तो चाहिए
तो बराबर चाहिए त्यारे चाहिए
हाँ त्यारे ना
तरही शब्द है ना त्यारे हवे त्यारे जीवनु शरीर आदि सर्व परद्रव्यों थी विभागना साधनभूत विभाग का अर्थ क्या है भेद करना परद्रव्यों से भिन्नता जानना है उसका साधन यानी उसके लिए क्या उपाय है प्रतिभिन्न पाड़वाना भेद ज्ञान ना कारणभूत है ना वो भेद ज्ञान का कारणभूत असाधारण सो लक्षण शू छे भेद ज्ञान ते ज्ञान छे बाकी बूरो अज्ञान बाकी बूरो के पूरो पूरो चाहिए ना बाकी पूरो पूरो करो तो अच्छा है बूरो नहीं पूरो
केवल
शेष सभी अज्ञान धर्मदास शुल्लक वड़े हेमराज तू मान आहा हा परती भेद पाड़वानु आत्मा मा साधन शू छे कहे छे आहा हा हाँ शरीर हूँ नहीं आवाज आवाज શરીર હું નહીં વાણી નહીં મન નહીં એનો કરતા નહીં પ્રયોજક નહીં અનુમોદક નહીં કારણ નહીં ક્યાં કહા શરીર હું નહીં વાણી નહીં મન નહીં ફિર ક્યાં બતા ઉસકા કરતા નહીં પ્રયોજક નહીં પહેલે અમને દેખીએ ને ચાર ચાર પોઈન્ટ બતાવે થે ઉસમે અનુમોદક નહીં કારણ નહીં ત્યારે હવે પરથી ભેદ પાડવાનું સાધન શું સમજાનું કંઈ ચૈતન્યનું લક્ષણ શું આહા હા જીવનું શરીર આદિ બધું લીધું ને શરીર વાણી મન કર્મ આદિ પરદ્રવ્યોથી વિભાગ એટલે જુદું પાડવાના સાધનભૂત અસાધારણ સ્વલક્ષણ શું તે પૂછે છે તેને ઉત્તર કહે છે કેમ તરહી જીવસ્ય અવિયે સંસ્કૃત હેડિંગ કેમ તરહી જીવસ્ય શરીરાદિ સર્વ પરદ્રવ્ય વિભાગ સાધનમ અસાધારણમ સ્વલક્ષણમ ઇતિ આવેદયતિ છે ને એને ઉત્તર આપવામાં આવે છે મેળાલ છે ને એને ઉત્તર આપવામાં આવે છે ગાથા 172 આપણે છપાઈ ગઈ છે અલિંગ ગ્રહણનું પુસ્તક છપાણું છે નહીં ભાઈએ છાપ્યું હતું વાકાનેર એને પુસ્તક છાપ્યું હતું સદગુરુ પ્રવચન પ્રસાદ છાપતા હતા ને એને બહુ રસ હતો એ માલુમ હે સદગુરુ પ્રવચન પ્રસાદ ક્યાં હે લક્ષ્મી યાદ હે વો ઉસકે વો ઝેરોક્સ ઝેરોક્સ ને ક્યાં કહેતે હમ ઉસકો સાયક્લો સ્ટાઇલ નિકાલતે ને રોજ નિકાલતે થે સદગુરુ પ્રવચન પ્રસાદ હમને કિતને હી ઉસકે હમને લિયે થે પ્રવચન સાર કે ભી લિયે થે ઓર ઉસકે ઝેરોક્સ कहाँ कहाँ से मांगे थे बाप रे बाप क्योंकि उसके लिए हमने बहुत सी पुस्तकें फॉलो की थी तभी ये सारी पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी हाँ मगर वो भी हिंदी वाला था पर हमने ओरिजिनल गुजराती में से फॉलो किया था हाँ आत्मधर्म तो बाद में आने लगे उसके पहले साइक्लो स्टाइल सब जगह जाते थे रोज के रोज जाते थे हाँ वो सदगुरु प्रवचन प्रसाद એને બહુ રસ હતો અરસમ અરૂવમ અગંધમ આ ગાથા તો સમયસારમાં છે 85 સિકાયમાં છે નિયમસારમાં છે પ્રવચનસાર ચાલે છે એમાં પણ છે આ 4માં છે અને અષ્ટપ્રહરમાં છે જેટલા કુંદકુંદાચાર દેવના 5 શાસ્ત્ર છે એમાં આ છે 5ે કોતરાઈ ગયા છે અને વા પરમાગમ મંદિર મેં સબકો વો તો દીવારોમ પર કોતરાઈ ગયા 5માં 5 વાર ગાથા આવી હશે
5 વાર કે એક એક વાર
ઓર ભી હે ને હા
5 વાર કે એક એક વાર
ધવલા મેં ભી ઉસકો ધવલા મેં ભી બતાયા હૈ ઉસકો એને ઉન્હોને ઉસકો રેફર કિયા હે મગર ધવલા મેં ભી ઉસકો લે લિયા હે આપને કુછ કહા
યહાં પર બતા રહે હૈ 5ે કોતરાઈ ગયા છે લાસ્ટ લાઈન અને પાંચેમાં પાંચ વાર ગાતા આવી ગઈ છે,
જે દરેકમાં એક એક વાર.
ઓ, ધેટ ઇઝ વોટ આઈ મીન.
હા, અને પાંચેમાં મિલકર પાંચ વાર. વજન અહીં છે. ભગવાન કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ કહે છે, જાણ ભાઈ, જાણ હે ને, જાણ અલિંગ ગણ. ગુજરાતી મેં વો જાણ નહીં આયે ને, છે ચેતના ગુણવન જીવને, વો જાણ વાલી બાત, ઇસલિયે ઉન્હોને કહા ઉસમે વજન હૈ જ્યાદા. છેલ્લું ઈ લેશે, પુદગલ તેમજ અપુદગલ, એટલે ધર્માસ્થી વગેરે, સમસ્ત અજીવ દ્રવ્યોથી વિભાગનું સાધન તો ચેતના ગુણમયપણું છે. છેલ્લી લીટી છે, વિભાગનું સાધન તો કહ્યું હતું ને, જ્ઞાન સાધન છે. હા હા, પરથી ભેદ જ્ઞાન કરવું એમાં જ્ઞાન સાધન છે. તો કહાં સે લાના પડેગા અભી બહાર સે? પરથી ભેદ જ્ઞાન કરવું એમાં જ્ઞાન સાધન છે. એ જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, ભેદ જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, બાકી પૂરો અજ્ઞાન. શેષ સભી અજ્ઞાન કહી દે ને, બુરો ને પૂરો. ક્યા વો ક્યા હૈ, સુનકર લિખને વાલે હૈ ના, વો ખ્યાલ નહીં આયા હોગા તો એસા લિખ દિયા. આહા, ધર્મદાસ શુલ્લક કહે,
એક મિનિટ, પણ બુરો કા અર્થ કે લે,
પૂરો પૂરો પો કરના પો, નહીં નહીં, બુરા. હા હા, ખરાબ, બુરા એને ખરાબ. ધર્મદાસ શુલ્લક કહે, હે મહારાજ, તું માન, આપને ભૂરો કા અર્થ ક્યા, એ બુરા હૈ.
હા, એ મેં પૂછ રહા હું, આપને બ કા પ કરને કો કહા ના.
હા,
પૂરો અજ્ઞાન,
પૂરે ને સમસ્ત, બાકી શેષ સભી. હે મહારાજ, તું માન, આ સમય જ્ઞાન દીપિકામાં છે. સમય જ્ઞાન દીપિકા, ઓહો હો, એ સમય જ્ઞાન દીપિકા હૈ વો ધર્મદાસ શુલ્લકજી કી હૈ, ઓર સમય જ્ઞાન ચંદ્રિકા હૈ વો ટોરમલજી કી હૈ, નહીં તો ઉસકે ઉસકે સાથ મિલા નહીં દેના.
વો અલગ.
હા, વો અલગ. દિગંબર સંતો, દિગંબર શ્રાવકો પણ પરમ સત્યને રાખીને પરિણમેલા, એક ધારાવા એ વાત છે. ત્યાં સમયસારમાં પણ કીધું ને, ભેદ વિજ્ઞાનત સિદ્ધા સિદ્ધા એ કિલકેશન, હું હતા ને, તસૈવા ભાવતો બધા બધા એ કિલકેશન, અને જો કોઈ સિદ્ધ હુએ હૈ વો ભેદ વિજ્ઞાન સે હી હુએ હૈ, ઓર ભેદ વિજ્ઞાન કે અભાવ સે બંધે હૈ. વો સમસ્ત જીવ ભેદ વિજ્ઞાન કે અભાવ સે બંધે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે એમ કહ્યું ને, એ આત્મખ્યાતિ મેં ને, વો શ્લોક હૈ ઉસકા કલશ. અહીં કીધું, ભેદ વિજ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, રાગ અને શરીરથી ભગવાન આત્માને ભિન્ન અનુભવવો, આહાહા, અને પરમાગમનો સાર પણ એ છે. શુદ્ધાત્મ તત્વની પ્રાપ્તિ એનો સાર છે. આમ વિતરાગતા તાત્પર્ય કહ્યું, પણ એનો અર્થ એ થયો ને, પરની અપેક્ષા છોડી દઈ, પોતાના આત્માને જાણવો, અનુભવવો, એ બધા પરમાગમનો સાર છે. એને કોઈ ભી આગમ લો, કોઈ ભી ગ્રંથ લો, જો કોઈ હમ સ્વાધ્યાય કરતે હૈ, ઉસકા સાર યે હૈ, ક્યા હૈ, આત્મા કો જાનના હૈ, અનુભવના હૈ. ચારે અનુયોગના કથનમાં આ સાર કહેવો છે, એ અહીં સાર કહે છે. અબ જો 20 બોલે ઉસકો ક્રમ સે લે લેંગે. આત્મા રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, બીજો પોઈન્ટ, રૂપગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, समस्त अन्य द्रव्योथी विभागनो साधन चेतना गुण छे आहा रस नथी ते ज्ञान सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार मां अग्यार बोल आवे छे ने शास्त्र नथी ते ज्ञान शास्त्र कई जाने नहीं आहा हा लो पेलो कहे शास्त्र थी ज्ञान न थाय शास्त्र कई जानतु नथी ए तो जड़ वाणी छे आहा हा जाननारो तो भगवान आत्मा छे ए जाननारो केम केवो કે સ્વસન્મુખ થઈને પોતાનું ભેદ જ્ઞાન કર્યું તેને જાણનારો કહેવામાં આવે છે. ને તો કે હમ તો જાણને વાલે હમ તો જાણને વાલે તો કહેતે નહીં. કે સ્વસન્મુખ હોકર અપને કા અપને આપ કો જાના હૈ ભેદ જ્ઞાન કિયા હૈ ઉસને એને પર સે ભિન્ન અપને કો પહેચાન લિયા હૈ તો ઉસકો જાણને વાલા કહેને મેં આતા હૈ. ગંધગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો ગંધગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી चेतना गुणमयपणू छे. हर एक के साथ उन्होंने चेतना गुणमयपणू लगाया वो भले सबसे लास्ट में बताया है फिर भी गुरुदेव हर बार उसको याद कर रहे हर गुण के साथ. अस्थि से है स्पर्श गुण रूप व्यक्तता ना अभाव रूप स्वभाव वाला हुआ थी अव्यक्त लेवू छे ने स्पर्श गुण रूप व्यक्तता ना अभाव रूप स्वभाव वाला हुआ थी ચેતના ગુણમયપણું છે. હા હા શબ્દ પર્યાયના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી શબ્દની પર્યાયના સ્વભાવનો જીવમાં અભાવ છે તે બધાને કારણે અર્થાત રસ રૂપ ગંધ વગેરેના અભાવરૂપ સ્વભાવને કારણે અભાવરૂપ એમ લિંગ વડે અગ્રાહ્ય હોવાથી એમ પેલું ટૂંકું કરશે. સર્વ સંસ્થાનોના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી આ શરીરના આકારો સંસ્થાન છે ને એના અભાવ સ્વભાવવાળો હોવાથી આત્માને પૂદગલ દ્રવ્યથી વિભાગના સાધનભૂત અર્થાત પૂદગલ દ્રવ્યથી જુદા પાડવાના સાધનભૂત અબ આગે બતા રહે ફિર સે દુબારા લે રહે. એક અરસપણું રસગુણના અભાવ સ્વરૂપ હોવાથી અરસપણું છે એમ કહેવું છે. માતે એ કીધું ને રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અરસપણું છે એમ અહીં લેવું. અરૂપપણું અગંધપણું અવ્યક્તપણું અશબ્દપણું અલિંગ ગ્રાહ્યપણું ગ્રાહ્ય કહા ને યહાં પર પેલું એ બધામાં ભેળવ્યું અને અસંસ્થાનપણું છે. મુમુક્ષુ કહેતે આ પાંચી ગયા એનો અર્થ કંઈ ન કર્યો. ગુરુદેવ શ્રી કહેતી કર્યો ને આ કર્યો અર્થ કર્યો ને અર્થ રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અરસપણું છે એમ કીધું ને. રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અરસપણું છે. રૂપગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અરૂપપણું છે. ગંધગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અગંધપણું છે. સ્પર્શગુણરૂપ વ્યક્તતાના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અવ્યક્તપણું છે છે અને શબ્દ પર્યાયના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી અશબ્દપણું છે. છેલ્લે કીધું અલિંગ ગ્રાહ્ય છે એમ કીધું ને. લિંગ વડે અગ્રાહ્ય હોવાથી અલિંગ ગ્રાહ્યપણું છે એમ એની સાથે આ બધા મેળ છે. પરના લિંગ વડે ચિહ્ન વડે કોઈ રીતે પકડાય એવો છે જ નહીં. એટલે એથી અલિંગ ગ્રાહ્યપણું છે એને કિસી લિંગ ચિહ્ન કે દ્વારા આત્મા પકડમે નહીં આતા અને સંસ્થાન એમાં નથી તેથી અસંસ્થાનપણું છે. લ્યો એની સાથે મેળવ્યું ને પૂર્વે સાથે આ શબ્દોમાં મેળવ્યું પૂર્વ સાથે આ શબ્દોમાં મેળવ્યું. પહેલે ક્યાં બતાવ્યા ઇસકે અભાવરૂપ ઇસકે અભાવરૂપ ઇસકે અભાવરૂપ સ્વભાવવાળા હોનાય છે ફિર સબકા ઇકઠ્ઠા લેકર કે તે અલિંગ ગ્રાહ્ય છે એટલે ઉસકે સાથ વો મિલા દિયા. રસગુણના અભાવ સ્વભાવવાળો હોવાથી આત્મામાં અરસપણું છે એમ સમજાણું. આ તો બધું ઘણી વાર વંચાઈ ગયું છે નવું આવે છે ને અત્યારે કાલે કહ્યું હતું ને. પૂદગલ તેમજ અપૂદગલ એવા સમસ્ત અજીવ દ્રવ્યો લ્યો પૂદગલની વ્યાખ્યા કરી એમ ધર્માસી અધર્માસી આકાશ અને કાળ समस्त अजीव द्रव्योथी विभागनू साधन तो चेतना गुणमयपणू छे। पहले तो एम कहूँ रसगुण केम उपाड़ियो के आत्माना आनंद रसथी रसगुण भिन्न छे त्यांथी उपाड़ियो छे। उसमें से फिर और एक हमें बताएंगे क्यों क्या रस को ही पहले क्यों लिया कि आत्माना आनंद रसथी रसगुण भिन्न छे इसलिए वहाँ से शुरू किया। नहीं तो वंद वर्ण गंध रस स्पर्श लिए छे। हम कहते समय स्पर्श रस गंध वर्ण कहते हैं परंतु शास्त्र में हमेशा वर्ण गंध रस स्पर्श लेते हैं। क्यों लेते हैं अरविंद भाई? लक्ष्मी को मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं। नहीं नहीं, इस ऑर्डर में क्यों लिया वर्ण गंध रस स्पर्श? याद है लक्ष्मी? हाँ नहीं नहीं नहीं, कर्मकांड का विषय है ये। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाँ देखो, ज्ञानावरण में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पहले हमने मति ज्ञानावरण कहते हैं, फिर श्रुत ज्ञानावरण वगैरह वगैरह, तो उसमें सबसे बहुभाग जाता है पहले नाम को, फिर आखिर तक कम कम होता है। पहले तो एक भाग अलग से निकालते हैं और फिर उसके समान चार भाग करेंगे या पांच भाग करेंगे, फिर उसका एक बहुभाग, फिर उसका भाग, उसका बहुभाग, उसका बहुभाग, उसका बहुभाग, इस तरह से देने में आता है। इसलिए उसी ऑर्डर से हम उन्हें नाम लेते हैं। केवल ज्ञानावरण में सबसे कम अल्प माल मिलता है। देखो ज्ञानावरण का पूरा टोटल जितना परमाणु है एक समय में जितने ग्रहण करते हैं उसका पहले में पहले अनंत से भाग देते हैं, एक भाग अलग निकाला, अनंतवा भाग पांच में जाता है मति ज्ञानावरण को सबसे ज्यादा, फिर टेपरिंग, और जो दूसरा जो है क्योंकि ये सभी चार में जाता है, क्योंकि वो देखो सर्वघाती माल सब में जाएगा और देशघाती माल मात्र देशघाती प्रकृतियों में जाएगा, माल यानी द्रव्य यानी परमाणु, इसलिए वो चार में जाएंगे। हमको उसको नहीं बताना है। नाम कर्म में क्या बात होती है? उल्टे क्रम से, जैसे गति जाति शरीर बंधन संघात वगैरह हम कहते हैं ना, अंत में किसका नंबर आता है? निर्माण का, निर्माण नाम कर्म। तो सबसे पहला बहुभाग वहाँ चला जाएगा। पहले तो समान रूप से देंगे, जो पर्याय बन रही ना, जैसे एक केंद्रीय की अपर्याप्त की है तो 23 वाला बंद होगा, ऐसे अलग 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 है। देवगति नरगति बनती तो 28 प्रकृतियाँ बनती है, तो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो नाम कर्म में उल्टे, जिस ऑर्डर से हम कहते हैं ना वो उल्टा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम ऑर्डर लेते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श, हाँ तो स्पर्श में ज़्यादा जाएगा, स्पर्श रस गंध वर्ण इस तरह से, हाँ वर्ण में कम जाता है। कहते समय हम वर्ण पहले कहते, ये लिखा है ना, ये क्या है? वर्ण पहले लिया ना। देखो गुरुदेव ने क्या बताया अभी, हाँ कंपेरेटिवली देखो उन्होंने अभी गुरुदेव ने बताया था, कहाँ गए हम, कहाँ तक पढ़े थे? पहला पैराग्राफ पढ़ा था हमने, देखो चौथी लाइन, 1 2 3 4 5 में, नहीं तो वर्ण गंध रस स्पर्श ले छे, ले छे उनको मालूम है ऑर्डर कौन सी है। उसका उल्टा पढ़ो तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। हाँ तो किस ऑर्डर से ग्रंथ में यानी शास्त्र में उसका आता है वर्णन? कर्म कांड में जब हम प्रकृतियां गिनते हैं तो इसी पद्धति से गिनते हैं उसको, वर्ण रस गंध वर्ण गंध रस स्पर्श। भगवान आनंद नो रस छे। अरे हो गया, अरे रोज जरा याद दिलाना, बस यहीं से पढ़ेंगे हम कल। हाँ चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नम सदा देत हो लक्ष्मी।